قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. لكتاب تم اپنے دین میں غلوب نہ کرو. یہی بات پہلے بھی گزر چکی اور میں بہت ڈیٹیل میں اس کو سمجھا چکی ہوں. غلوب کیا ہوتا ہے؟ جب انسان حد سے بڑھ جائے, مبالغہ آرائی کر, جیسے عیسائیوں نے کیا کہ انہوں نے خدا کا بیٹا ہی بنا کے رکھ دیا. ٹھیک ہے, بعد میں اس کی یہ بھی ڈیفینیشن کی ہے کہ غلوب جو ہے افراط و تفریط ہے, یعنی حد سے بڑھ جانا بھی غلوب ہے اور جو حد ہے اس سے کم ہی کر دینا. جیسے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ولد الزنا کہہ دیا, تو وہ تفریط ہے. تو نہ بڑھانا ہے نہ کم کرنا ہے مرتبے سے. لا تغلو فی دینکم غیر الحق, نہ حق اپنے دین میں غلوب نہ کرو, حد سے نہ بڑھو. تو کیا کوئی حق والا بھی غلوب ہوتا ہے؟ نہیں. یہ ویسے سمجھانے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ یہ غلوب جو ہے وہ نا حق ہی ہے, تو نا حق مت کرو یہ غلوب. تو جب چاہے پیغمبر ہی کیوں نہ ہو, ان کو ان کی حد سے بڑھا دیا جائے اور یہ کہا جائے یہ مشکل کشا, یہ حاجت روا. پیغمبروں کو تو چھوڑیں, آج کل تو کئی بھی جھنڈیاں لگا کے کسی بھی قبر کے اوپر آپ گرین چادر چڑھا دیں اور بس پھر لوگ آنے لگیں گے اور کہیں گے یہی ہمارے داتا ہیں, یہی مشکل کشا ہیں. پیغمبروں کی تو ذات بہت اونچی ہے انسانوں میں, لیکن یہ تو کسی کو بھی نہیں چھوڑتے. ہر ایک کو انہوں نے مشکل کشا حاجت روا بنایا, ہر ایک جگہ پہ سجدے ہو رہے ہیں. یعنی کوئی اس چیز کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے کہ کون ہے, بس کہیں پہ بھی کر لو ہماری بس کام ہو جائے پورے, ہمارا جو مسئلہ ہے بس وہ حل ہو جائے, بس کسی سے بھی کسی کے آگے بھی سجدے کرا لو, کرنے کو تیار ہو جائیں گے. یعنی کوئی ایمانی غیرت یا ایمان کی کوئی ایک جذبہ ہوتا ہے, ایک ایمان آپ کو ایک قوت دیتا ہے, ایمان آپ کو ہر جگہ پہ سجدے کرنے سے باز کر دیتا ہے, وہ کچھ ہے ہی نہیں. بس دنیا کے یہ مسئلے ہیں چار دن کے, ان کے حل کے لیے ہم اتنے ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں نا کہ کسی کے پاس اولاد نہیں ہے, وہ کہتا ہے آپ جائے جس کی مرضی آپ میرے سے پوجا کرا لیں, کہیں جس مرضی مزار پہ لے جائیں, جس مرضی کے آگے سجدے کرا لیں, جس کی مرضی کے آگے دعائیں کرا لیں, منتیں مرادیں وہاں پہ کرا لیں, دھاگے بندوا لیں, میں کرنے کو تیار. کیا ہے چار دن کا مسئلہ ہے اس کے لیے؟ کوئی بیمار ہے تو اس کی شفا کے لیے, کسی کا کوئی اور مسئلہ ہے ہسبینڈ کا تو وہ اس کے لیے کہیں پہنچی نہیں ہے. کیا دین کو بنا کے رکھ دیا؟ ایمان کہیں ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان تو سٹرونگ کر دیتا ہے, ایمان تو نہیں جھکنے دیتا انسان کو کہیں پہ. یہ کیسے ایمان ہے جگہ جگہ جا کے جھکنے لگے, کوئی جگہ چھوڑی ہی نہیں انہوں نے. اب دیکھیں ایک ایمان کی بات آپ کو بتاتی ہوں, یہ کیا فرق ہوتا ہے. کوئی غیر مسلم ہے, وہ ہندو ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے کسی کے ذریعے پیغام مجھے بھیجوایا کہ انہوں پتا تھا کہ انہیں دین کا کام کرتی ہے, کہ ان سے کہیں خاص طور پہ کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں ہم کسی مشکل میں. تو میں یہ سوچ رہی تھی اللہ اکبر, اگر مجھے کہا جائے تو میں کبھی بھی کسی سے نہ کہوں کہ تم اپنے خدا سے دعا کرو ہمارے لیے کہ ہم جس بھی مشکل میں, کیونکہ مجھے پتا ہے, مجھے یہ یقین ہے کہ جو میں جس کے اوپر ہوں وہ حق ہے اور میرا خدا وہ ایک ہی ہے اور وہی نفع نقصان کا مالک ہے. لیکن ان کا اسی سے پتا چلتا ہے کہ دے ہیو نو دین, نو بیس, اور وہ دوسروں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ دعا کریں, آپ اپنے خدا سے دعا کر دیں ہمارے لیے. اگر ان کو اتنا یقین ہوتا نا اپنے دین پہ تو وہ کبھی بھی ٹس سے مس نہ ہوتے. اگر ان کو یہ ہوتا کہ ان کا تو جھوٹا اور غلط عقیدہ ہے اور ہم ہی صحیح ہیں, تو کیا پھر ان کی بیس ہے؟ اس کا مطلب ان کو اپنے بھی دین پہ کوئی یقین نہیں ہے. تو شرک بالکل بیس لیس چیز ہوتی ہے. تو لا تغلو فی دینکم غیر الحق, ان سے کہا گیا اہل کتاب تم کیوں غلو کرتے اپنے دین میں نہ حق. ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل, نہ تم خواہشات کی پیروی کرو اس قوم کی جو بھٹک گئے ہیں اس سے پہلے. جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ گریک میتھڈالوجی کے پیچھے چل پڑے, ان کے فلسفے کو انہوں نے اختیار کرنا شروع کر دیا, ایرسٹوٹل وغیرہ اور یہ ان کے چیزوں کو دیکھنے لگے. تو فلسفے میں آپ کو پتا ہے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی لاجک لے کر آؤ, اگر اس بات کی لاجک نہیں تو ہم نے ماننا ہی نہیں. اب وہ لاجک کرتے کرتے تو ان کے پیچھے جب یہ چلے تو بھٹک گئے یہ خود بھی, ٹرینیٹی کا عقیدہ بنا لیا, کیا کیا وہ ادلو کثیرن, اور انہوں نے گمراہ کیا بہت سو کو. جنہوں نے خود لوگوں کو گمراہ کیا تھا تو ان کے پیچھے خود بھی بھٹک گئے, انہوں نے تو بہت سو کو گمراہ کیا تھا. ادلو انسوا اس سبیل, اور وہ بھٹک گئے سیدھے راستے سے. تو ایسی قوم کی پیروی نہ کرو جو بھٹکے میں, خود بھی بھٹکے میں اور دوسروں کو بھی بھٹکا رہے. اور ہمارے لیے آج یہ لیسن ہے कि ना ख्वाहिशात की पैरवी करो ऐसों की जो कि खुद भटक गए हैं, जिनको अल्लाह ताला ने खुद फरमाया ये दौलीन है, ये गुमराह है, ये गुम कर दिया इन्होंने रास्ता। गुमराह का मतलब क्या था? रास्ता गुम कर दिया। इनको तो रास्ता खुद नहीं पता। अच्छा कोई बंदा लॉस्ट हो, आप उसके पीछे गाड़ी लगा लें तो आपका क्या हाल होगा? आप भी लॉस्ट हो जाएंगे। आप उसके पीछे लगाएंगे ना कि आपको पता है इसको रास्ता, आप अपने आगे किसको लगाते हैं? मतलब चार लोग ने कहीं जाना है तो आप कहते हैं आपको रास्ता पता है, अच्छा फिर आप आगे लगे, ऐसे कहते हैं ना। या हम कहते हैं आपको रास्ता नहीं पता मैं आपके पीछे चल पड़ती हूँ, तो बेवकूफी की इंतहा होगी। ये हाल आज हमने अपना किया है, ये बेचारे खुद रास्ता गुम कर बैठे हैं, उनको बजाय हम रास्ता दिखाएं, हम कहते नहीं हम भी इनके पीछे गुम हो जाते। वो जो कर रहे हैं हमने भी वैसा ही करना है, वैसा ही बनना है, वैसा ही अपना हर चीज, अपना कल्चर, अपना सब कुछ वही कर लो। दीन में भी इनके पीछे चलो, इनकी ईदें मनाओ, इनके त्योहार मनाओ, इनके जैसे बनो, तो पता नहीं इसमें हमारी शान है कोई। वो कुरान कहता है तो सारा दिन तो आप पढ़ती रहती है कि वलद दुआलीन वलद दुआलीन वलद दुआलीन, फिर उसके बाद फिर उसके पीछे चल पड़ती है। ये किस किस्म की मुनाफकत है? सारा दिन अल्लाह से कहते रहना, अल्लाह मुझे सीधे रास्ता सिखाते, मुस्तकीम दिखा दे, अल्लाह इसके रास्ते बना चलाना, उसके बाद नमाज उठे और क्रिसमस ट्री सजा रहे हैं, बच्चों को आगे सेंटा बन के बैठ रहे हैं, सेंटा के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। तो पता नहीं क्या हो गया आप लोगों को भी। लुआइन अल्लाह दीना कफर उमिन बनी इसराइलानी दाऊद सबनी मरियम, लानत किए गए हैं वो लोग जिन्होंने कुफर किया बनी इसराइल में से, चाहे यहूदी हैं चाहे ईसाई बने, सारे बनी इसराइल में से ही थे, जिन्होंने भी कुफर किया उनके ऊपर लानत की गई। किसकी जुबान पर? दाऊद अलैहिस्सलाम की और ईसा बिन मरियम की। आपको पता है उन दोनों के ऊपर किताबें उतरी हैं, उन किताबों में भी इनके ऊपर लानत की गई है। दाऊद अलैहिस्सलाम पे जबूर उतरी, ईसा अलैहिस्सलाम पे इंजील उतरी, उनके वक्तों में जो लोग थे उन्होंने जो कारनामे किए उस पे अल्लाह ताला ने इनकी जुबानों से उनके पर लानत कराई। ईसा अलैहिस्सलाम ने तो बड़ी सख्त सख्त बातें इनको कही। दाऊद अलैहिस्सलाम भी इनकी बातों में आता है कि इनमें कोई नेकोकार एक भी नहीं, ये अपने हमसाये से सुलह की बात करते हैं और इनके दिलों में बुराई होती है। ये वो तो खुद बताते हैं, इनकी बातों में लिखा है इनके अकबाल में। ईसा अलैहिस्सलाम ने भी इस तरह इनके बारे में बात किया है, रियाकार फकीर हो तो छोटी छोटी बातों को पकड़ के बैठ जाते, बड़ी बड़ी निकलते जाते। तो लानत का मतलब क्या होता है? रहमत से दूरी। अल्लाह ताला जब किसी के ऊपर लानत करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला कह रहा है तुम पे लानत हो, नहीं, अल्लाह ताला उसको दूर कर देता है अपनी रहमत से। और जब कोई और लानत किसी के ऊपर करे, जैसे अब ये पैगंबर कर रहे हैं या फरिश्ते करते हैं या और लोग करते हैं, तो वो बद्दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह इनको अपनी रहमत से महरूम कर दे। तो इतनी बड़ी सख्त बात पैगंबरों की जुबान से इनके लिए आई। और दाऊद अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम का खासतौर पर मैंने आपको एक बात वजह बता दी कि क्यों लेकर आया। दूसरी वजह यह है कि ये दाऊद अलैहिस्सलाम को बहुत बड़ा समझते थे। अभी भी आप देखें स्टार ऑफ डेविड और डेविड और बहुत ज्यादा उनके लिए इनके खास इनके जज्बात होते हैं। और ईसा अलैहिस्सलाम तो ईसाइयों के लिए तो आपको पता ही है कि उनके लिए कितनी मुकद्दस हस्ती है। तो उनकी जुबानों से इनके लिए कोई रहमत की बातें नहीं आई, इनके लिए लानत भेजी है उन्होंने इनके ऊपर। ये क्यों? इतनी बड़ी बात कि पैगंबर जो मोहसिन होता है अपनी उम्मत का, उन्होंने लानत क्यों भेजी इनमें से जिन्होंने कुफर किया उनके ऊपर? सबके ऊपर नहीं, जिन्होंने कुफर किया इनमें क्यों भेजी? क्या वजह? वजह आ गया आ रही है। तीन वजूहात यहाँ पे बयान की गई हैं। पहली वजह ज़ालिका बिमा आसव, ये इस वजह से कि उन्होंने नाफरमानी की। इसियान होता है अल्लाह के हुक्मों को तोड़ना, जो अल्लाह ने फर्ज किया है उस फराइज को छोड़ देना, जो अल्लाह ने हराम किया उसके अंदर जाके पढ़ना, ये है नाफरमानी। ठीक है, वह कानू यातदू, उनका सेकंड जुर्म क्या है? कानू यातदू, हद से बढ़ जाने वाली। और ये भी लोगों के साथ होता है कि लोगों के साथ जुल्म करना, ज़ियादती करना, लोगों के हक मार लेना, उनके साथ बुरा करना। ये तो यानी पहला कि अल्लाह का भी हक नहीं देते, उसका हक है कि उसको बात मानी जाए, लोगों के साथ भी बुरा करते थे, इस वजह से इनके ऊपर लानत की गई। और तीसरा जुर्म जो लानत का बहुत बड़ा सबब बना इनका, ये सुनने वाली बात है हमारे लिए, यानी क्या चीजें, अगर आपसे पूछा जाए क्या चीजें लानत का सबब बन बनी इसराइल के ऊपर, क्या ऐसा क्या उन्होंने किया था कि कहते हैं कि मगदूब या नहीं, अल्लाह का गजब उनके ऊपर हुआ, रहमत नहीं हुई, गजब, वो मगदूब हो गए। तो वो क्या करते थे ऐसा, क्या उन्होंने बुरा किया था? वो बेचारे क्यों लानत के मुस्तहिक हुए? वो बेचारे थे? नहीं, वो बेचारे नहीं थे, उनका ये थे उनके जराइम। अब इतने सारे जराइम खोल खोल के तो आपको बताए गए, मगर एक एक लफ्ज में भी आपको बता दिया गया कि ये उनकी कारिस्तानी थी, ये एक लफ्ज में अल्लाह की नाफरमानी, हद से बढ़ जाना, हदों को तोड़ देना, जुल्म में हक मारने में कहीं रुकते नहीं थे, दीन में गुलूफ करने के ऊपर आए तो उसमें भी इंतहाई करते। और नंबर थ्री, कानूला यतना हमको, अब यहाँ पे आम लोगों की बात हो रही है, यहाँ पे उलमा की भी बात हो रही है। पहले आपने उलमा का भी कसूर ये सुन लिया ना कि वो लोगों को रोकते नहीं थे, क्यों नहीं रोकते थे? अल्लाह ताला ने पूछा क्यों नहीं, लोग हराम कारियां कर रहे हैं तो उसके ऊपर उनके माथों पे शिकन नहीं आती कि ये क्या करने लगे हैं? अब आम जो भी लोग हैं उनको, कानो ला यतना होना मुनकर फालू थे, वो रोक ना हो रोकते एक दूसरे को बुराई से जो उन्होंने की उसको, यानी आपस के अंदर कहते नहीं थे कभी किसी को कि किसी को मना ही कर दे कि ये तुम ना हरकत करो, ये तुम ना बुराई करो। यानी ऐसा माशरा था जहां पे अमर बिल मारूफ नहीं मुनकर नहीं होता था, तो उस माशरे के ऊपर भी लानत भेज दी गई। क्योंकि सूरह हूद में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला किसी बस्ती को जुल्म से हलाक नहीं करता जहां के रहने वाले इसलाह का अमल जारी रखे। यानी अगर किसी माशरे में इसलाह होती जा रही है ना, इसलाह कैसे होगी कि बुराई से लोग रोक रहे हैं, नेकी का हुक्म दे रहे हैं, तो ये इसलाह है, तब तक अल्लाह किसी बस्ती को हलाक नहीं करता जब तक ऐसे लोग वहां पे होते। लेकिन जब खराबी को या बुराई को बुराई समझा ही ना जाए, और बल्कि ये हद हो जाए कि बुराई को भी भलाई समझ रहे हैं, लोग अपनी बेटियों को डांस करवा रहे हैं सबके आगे और कह रहे हैं देखो कितना अच्छा डांस करती है, और सारे मर्द बैठ के देख रहे हैं, बुराई को भलाई समझ रहे हैं। बुराई जो है ना वो तो कितनी जबरदस्त चीज हो गई कि वो मॉडरेशन हो, मॉडरेशन भी नहीं, क्या रोशन ख्याली हो गई, वो तो मॉडर्न होना हो गया, ये तो अच्छा काम कर हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। जब बुराइयां भलाइयां लगने लगे तो बुराई से रोकेगा कहां कोई, यानी बुराई का एहसास खत्म हो जाए, लोग ये समझने लगे हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं, हम तो बिल्कुल ठीक हैं, वहां पे कैसे इसलाह होगी। हमें तो एक एग्जांपल आपको दिया, आप बेशुमार एग्जांपल्स देख लें, क्या हमें बुराइयों को भलाइयां समझा जा रहा है? आप नेकी का हुक्म तो उसको देंगे ना जहां पे कोई लगे कि भाई हाँ भाई यहाँ पे कोई बुराई हो रही है, नेकी या नेकी नहीं हो रही या कोई बुराई है, तब देंगे ना। तो जहां पे सारे माशरे में ये है कि ये तो सब चीजें ठीक है, हराम कमाइयों से पूरे बड़े बड़े घर बना लिए, ये कर लिए, सब उनको मुबारकबादे दे रहे हैं, मिठाइयां बढ़ रही हैं, तो बुराई कहाँ है? तो क्या हुआ, आजकल तो ये सभी चलता है, सबके ही कारोबार रहते हैं। अगर हर एक कोई बुराई के एहसास, देखिए दो वजूहत की वजह से ये खत्म होता है, एक तो ये कि बुराई का एहसास ही खत्म हो जाए, लोगों को यह एहसास ही ना रहे कि ये बुरा काम है। नंबर टू, जब ये लोग कहने लगते हैं ना खबरदार मुझे कोई ना रोके, किसी का हाथ नहीं है मुझे रोकने का, मेरी मर्जी में जो मर्जी करूं, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, उस वक्त भी इस्लाह का अमल रुक जाता है, नहीं हो सकती इस्लाह। जो माशरा समझने लगे, जो लोग समझने लगे हम परफेक्ट हैं, हमारे अंदर कहां कोई खराबी है, हम बस एक कलमा पढ़ने वाले हैं, बहुत सबसे अच्छे हैं भाई, तो बस फिर क्या से वहां पर इस्लाह होगी। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें लाजमी तौर पर हर सूरत में नेकी का हुक्म देना पड़ेगा और बुराई से रोकना पड़ेगा, तुम्हें लोगों को नेकी को इख्तियार करने पर मजबूर करना पड़ेगा। क्योंकि बनी इसराइल में क्या हुआ था, उनके अंदर प्रॉब्लम ही ये हुई थी। अब देखिये उनकी प्रॉब्लम सुनने शायद आपको समझ आ जाएगी क्या, कि अबू दाऊद की हदीस में कि सबसे पहली बुराई बनी इसराइल में जो दाखिल हुई थी कि एक शख्स दूसरे को कोई ऐसे खिलाफ शरा, कोई अल्लाह की नाफरमानी का काम करते हुए देखता था तो उसको रोकता था, ऐसे नहीं कि नहीं रोकता, रोकता था उसको, उसको कहता था अल्लाह से डर, इस बुरे काम को छोड़ दे, ये हराम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या, दूसरे दिन क्या करता था जब वो देखता था कि इसने तो छोड़ा ही नहीं, तो वो उससे अलग नहीं होता था बल्कि उसके साथ ही बैठ के खा पी रहा है, मेल जोल रख रहा है, सब कुछ हो रहा है। फिर इस वजह से सब में संगदिली आ गई, ये हदीस है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पूरी आयत की तिलावत फरमा के फरमाया, वल्लाह तुम पर फर्ज है कि भली बातों का हर एक को हुक्म करो और बुरी बातों से रोको, जालिम को उसके जुल्म से बाज रखो और उसको तंग करो कि वो हक पे आ जाए, यानी मजबूर करो उसको। तो यानी उनके अंदर भी प्रॉब्लम, एक दिन तो किसी को कह दिया, अगले दिन उसको सोचा मुझे क्या जरूरत है इसे बैर लेने की, मुझे क्या जरूरत है इसके साथ कुछ कट ऑफ करने की, मुझे क्या जरूरत है कि मैं अब और इसको कहती जाऊं, वो तो फिर माइंड ही कर लेगा तो छोड़ो बस अब ठीक है सब कुछ, अब उसको एक्सेप्ट कर लेना। यानी शुरू में कहते थे उसके बाद बस छोड़ देते थे, रोज रोज कौन कहता रहे। तो बुराई देखनी है तो उसके बाद ये नहीं है कि उसके बाद उसको पी जाएं, उसके बाद उसको एक्सेप्ट कर लें, उसके बाद उससे कॉम्प्रोमाइज कर लें, ये नहीं करना। ये नहीं होना कि कंफर्टेबल हो जाए उससे, ठीक है, एक कंफर्ट लेवल होता है ना कि अब मुझे वो मतलब अब मुझे बॉदर नहीं करती वो बुराई। शुरू में बॉदर करती थी, जब मैंने उसको शुरू शुरू में देखा तो मुझे बॉदर करती थी, अब मेरे लिए कोई मसला नहीं, अब मैं कंफर्टेबल हूं उसके साथ। तो ये नहीं होना चाहिए। अब जब ये होने लगेगा ना तो फिर क्या होता है जानते, फिर अल्लाह ताला सबके दिल मिला देता है। हदीस में यार है ना कि अल्लाह तुम्हारे दिल भी उनसे मिला देगा, यानी फिर आपको भी वो बुराई बुराई नहीं लगने लगी, फिर एक दिन आप भी खुद ही उसको उठ के कर लेंगे, क्योंकि अब आपको वो बुरी लगती ही नहीं है। और ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, जो लोग अमर बिल मारूफ नहीं है मुनकर करते हैं ना, वो खुद भी बुराइयों से बच के रहते हैं, बच जाते हैं, ना भी बच के रहना चाहे तो बच जाते हैं। क्यों? आपने देखा होगा कि जो लोग कोई ऐसा लोगों को कहते रहते हो, अगर वो किसी दिन जरा भी इधर से उधर गलती करें तो लोग फौरन उनके पीछे पड़ जाते, हाँ हमें तो बड़े लेक्चर देती थी, खुद देखो तुम ऐसे कर रही, तो उसको तो फिर रहना ही पड़ता है उसके ऊपर। तो ये इंसान के अपने लिए भी अच्छा है, उसको वॉच करने के लिए बहुत सारे लोग हो जाते हैं और कोई कुछ भी वो कुछ कहता ही नहीं, तो फिर क्या। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक और हदीस में आता है तिर्मिजी की, कि या तो तुम भलाई का हुक्म और बुराई से मना करते रहोगे, या अल्लाह तुम पर अपनी तरफ से कोई अजाब भेज देगा, फिर तुम उसे दुआएं भी करोगे लेकिन वो कबूल नहीं फरमाएगा। यानी दुआओं की कबूलियत खत्म हो जाती है, रोक दी जाती है जब लोग ये काम नहीं करते। लेकिन अगर सारे लोग ठंडे पेटों हर बुराई को एक्सेप्ट करने शुरू हो जाएंगे तो फिर होता क्या है, वो बुराई माशरे में आम हो जाती है। आज एक कर रहा है ना, फिर दूसरा भी करता है, फिर तीसरा भी करता है, फिर चौथा भी करता है, इस तरह सारे माशरे में वो फैल जाती है। अगर हर कोई ये कहने लगता ना, हमें क्या, हम क्यों बुरा बने, हम क्यों कहें। हाँ, जैसे मैंने आपको कहा, हिकमत से कहना जरूरी है, ये नहीं आप डंडे लेके तो लोगों के पीछे भागने शुरू कर दें, तो ये नहीं। लेकिन बुराई को देखें तो उसको मना करें जितनी भी आपकी ताकत है। आप देखें वो हदीस आपके सामने ही है कि आप सरदरम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स खिलाफ शरा काम देखे उस पर फर्ज है कि उसको अपने हाथ से मिटाए, अगर उसकी ताकत नहीं है तो जुबान से कह दे, अगर उसकी भी ताकत नहीं है तो दिल से तो उसको बुरा जाने। और ये ज़ईफ तरीन ईमान है, सबसे कमजोर है। अगर आप दिल में भी नहीं बुरा जानते ना, उनके साथ ही हाथ गप रहे हैं, खुशियां कर रहे हैं, कुछ गप्पियां हो रही हैं, और यू आर लीस्ट बॉदर्ड कि ये क्या है, आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो इसका मतलब कोई ईमान नहीं है। हमें कभी सोचती हूँ अल्लाह ताला हमें माफ करे कि व्हाट्सएप पे लोग भेजते हैं, कभी इतनी जुल्म की चीजें होती हैं कि अब तो मैं खोलती ही नहीं हूँ वीडियोस के, मुझे डर लगता है क्योंकि वो इंसान के दिमाग पे असर कर देती है। अल्लाह माफ करे, किसी बच्चे को ऐसा टॉर्चर किया जा रहा होता है, ये सोचो ये जो वीडियो बनाने वाला है ये क्या मरा हुआ है या जिंदा है, क्या है, इसकी नहीं है जरूरत की आगे जाके उसको रोक दे, ये खड़ा बना कैसे रहा है। सोचिए लोग जुल्म को देख के भी उसके पास वीडियो भी बना रहे हैं, कोई हमारे अंदर काम है समझी, ऐसी ऐसी चीजों की वीडियो बनाई होती है कि इंसान कहता है अल्लाह पर कोई मार रहा है उसकी ऐसी वीडियो, कोई ऐसी भूखे की वीडियो, कोई जुल्म की वीडियो है। तुम बुराई को देख रहे हो, तुम आगे बढ़ के उसको खत्म करो ना, कि तुम वीडियो बनाने में मशगूल। बेहिसी हो जाती है फिर माशरे के अंदर जब जुल्म देखते रहते हैं, बुराइयां देखते रहते हैं, गंदगियां देखते रहते हैं। तो फिर यही होता है, जैसे एक जमाने के अंदर था कि किसी ड्रामे के अंदर एक बिस्तर पे भी मियां बीवी को लेटे हुए नहीं दिखाते थे, अलग अलग बिस्तर होते थे, और आज देखें सब कुछ ही खुल गया, आप तो कोई कोई जैसे कि पता नहीं कितनी प्राइवेट बातें भी जाके दिखा देंगे कोई, इसलिए कि हमने रोका नहीं ना। हम जब वो जब बुराई आगे आगे बढ़ रही थी तो हम लीस्ट बॉदर्ड थे, हमें को परवाह ही नहीं थी। एक्सेप्ट आप करते गए करते गए करते गए, तो शैतान ना खुदवात शैतान है ना, खुदवात अल्लाह तभी खुदवात शैतान, शैतान के कदमों की पैर में वो कदम कदम लेके चलता है, स्टेप बाय स्टेप। एक दिन में नहीं आपको सारा खिला देगा, छोटा छोटा निवाला देगा, तुम इसको चबाओ पहले, इसको हजम करो, फिर अगला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर एक दिन इंसान को कोई बुरी बात ही नहीं लगती है, इंसान को फिर हर चीज एक्सेप्टेबल लगने लगती है। तो ये एक चीज है जो माशरे को पाक रखने के लिए जरूरी है। इसी तरह अबू दाऊद में है कि जिस जगह अल्लाह की नाफरमानी होनी शुरू हो वहां जो भी इन खिलाफे शरा उमूर से नाराज हुआ या उनका इनकार किया वो उसके जैसे, जहां जैसे वहां पे वो हाजिर ही नहीं। जैसे मसलन कि इस मसलन आप इस माशरे के अंदर रहते हैं लेकिन आप वहां पे उन खिलाफे शरा उमूर से नाराज हैं, आप अपनी तरफ से जुबान से भी बुरा कहते हैं, दिल में भी बुरा जानते हैं, अगर आपके हाथ से नहीं भी वो रुक सकता लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी तरह उसके खिलाफ है, तो वो ऐसे ही है जैसे वो वहां पे नहीं है। और जो उन चीजों से राजी हो गया वो चाहे वहां मौजूद ना हो, ऐसे है जैसे उनमें ही हाजिर है। जैसे मसलन है कि होमोसेक्सुअलिटी है, बाद लोग उन मुल्कों में भी नहीं रहते जहां पे इसकी शादियां जायज हो गई, वो इस्लामी मुल्कों में रहते हैं लेकिन वो वहां बैठे भी इंटरनेट पे कहते हैं ये बिल्कुल ठीक है, ये इनका हक है, अच्छा हुआ इनका हक इनको दे दिया, वो वहां से बैठे हुए उसको एंडोर्स कर रहे हैं कि ये सही चीज है। तो वो भी ऐसे ही है जैसे इसमें शामिल है, चाहे वो कहते हैं हम खुद नहीं करते लेकिन हम, एक मिसाल से आपको सिर्फ समझा रही हूँ, लेकिन अगर आप उन जगह पे रहते हुए उन चीजों के खिलाफ हैं तो अल्लाह आपको उनमें से काउंट नहीं करेगा, लेकिन अगर आप चाहे दूर बैठे हैं उन बुराइयों को देख के कहते हैं नहीं ये औरतें सही कर रही हैं ऐसे ही होना चाहिए, तो आप भी उनमें शामिल हैं क्योंकि आपने उनको वर्बली सपोर्ट किया। इब्ने माजा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे में फरमाया खबरदार किसी शख्स को लोगों की हैबत हक बात कहने से रोक ना दे, कि लोगों से इतने ना डर जाना कि हक बात ही ना कहो। इस हदीस को बयान करके हजरत अबू सईद खुदरी रो पड़े, हालांकि सहाबी रसूल हैं रजी अल्लाह तआला, फरमाने लगे अफसोस हमने ऐसे मौकों पर लोगों की हैबत मान ली, हम लोगों से डर गए और हमने नहीं कहा। वो ये बात कह रहे हैं और आज हमें कोई देख ले तो हम तो हर एक से ही डर रहे हैं, किसी को भी नहीं कहते कुछ, हालांकि हमें पता है वो हमारा कोई ना नफा कर सकता है ना हमारा कोई नुकसान कर सकता है, हमें कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी हम उनसे डरते हैं। इसलिए डरते हैं कि हमें बस उनकी नाराजगी, अल्लाह की नाराजगी की परवाह नहीं होती, उनकी नाराजगी की परवाह होती है। फिर एक हजरत अली ने एक खुतबे में अल्लाह ताला की हमदो सना के बाद फरमाया लोगों तुमसे पहले लोग इस वजह से हलाक हुए कि वो बुराइयां करते थे तो उनके आलिम और अल्लाह वाले खामोश रहते थे, जब ये आदत उनमें पक्की होगी तो अल्लाह ने इनको तरह तरह की सजाएं दी, बस तुम्हें चाहिए भलाई का हुक्म करो, बुराई से रोको इससे पहले कि तुम पे भी वही अजाब आए जो तुमसे पहले लोगों पे आया। यकीन रखो भलाई का हुक्म, ये बात मैं आपको बताना चाहूंगी, भलाई का हुक्म और बुराई से रोकना ना तो तुम्हारी रोजी घटाएगा ना तुम्हारी मौत करीब कर देगा। फिर तुम्हें डर लगता है तुम्हारी रोजी घट नहीं जानी, ये वो तुम्हारी रोजी को कोई नुकसान नहीं दे सकता ना तुम्हारी मौत को करीब कर सकता, वो तुम्हें मार नहीं सकता, तुम्हारी मौत का वक्त जो आना है उसी वक्त आनी। इंसान को ज्यादा से ज्यादा ये ख्याल हो सकता है ये मुझे मार देगा। अल्लाह अकबर। इसी तरह इब्ने माजा में ये रिवायत है कि तुम में से जो कोई अपनी किसी शख्स को अपनी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, तो लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह वो कैसे होती है, फरमाया जब तुम कोई खिलाफ शरा काम देखो यानी कोई गुनाह देखो, ऐसी कोई बात देखो, फरमाया खिलाफ शरा काम कोई अमर देखे और कुछ ना कहे, कयामत के दिन उससे पूछ होगी कि फलां मौके पर तू क्यों खामोश रहा, वो कहेगा अल्लाह मैं लोगों की वजह से खामोश रहा, तो अल्लाह ताला फरमाएगा मैं सबसे ज्यादा हकदार था कि तू मुझसे खौफ खाता ना कि तू लोगों से डर गया। तो ये सारी अहादीस हमें बताती है कि कितना जरूरी है भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना, वरना जैसे मैंने आपको हदीस बताई कि अल्लाह तुम पर अपनी तरफ से कोई अजाब भेज देगा, और अजाब की किस्में हम देख रहे हैं कि हमारे पर जो अजाब आए हैं मुसल्लत है। तो ये क्योंकि जो मोमिन होता है ना वो सेंसिटिव होता है, वो बुराई को देख के बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप देख लें आप लोग हर जुमे को अल्हम्दुलिल्लाह सूरह कहफ पढ़ते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को क्या चीज थी जो कि वो बोल पड़ते थे एकदम, हजरत खिजर कर रहे थे तो अल्लाह के हुक्म से कर रहे थे, मगर उनको लगा था वो ये गलत हो गया। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आपने एक बच्चे को कतल कर दिया, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं किसी की कश्ती का आपने वो तख्ता तोड़ दिया, कैसे आपने ये कर दिया, क्यों कर दिया। तो वो जो बुराई की चीजें थी ना उनसे हजम नहीं हो रही थी। तो एक मोमिन जो होता है वो बुराई देख के बैठ नहीं जाता है, को मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसके माथे पे तेवरी भी ना आए, उसमें सारा सब अच्छा है, सब चलता है, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, अल्लाह की नाफरमानियां होती रहे मुझे क्या परवाह। वो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसे लोग वो होते हैं जो खुदगर्ज होते हैं और बेहिस होते हैं, फिर ज़ाहिर है उनकी दुआएं भी नहीं कबूल होती। समय क्या या फालून कितना बुरा है जो थे वो करते, यानी अल्लाह ताला ने इनके कामों को कहा ये कितने बुरे काम करते थे, क्या क्या करते थे, अल्लाह की नाफरमानी, लोगों के साथ जुल्मों से आती और फिर बुराइयां देख देख के आराम से बैठे रहते थे। दे डिड केयर तरा कसीर मिनहुम यतवल्लौना, तुम देखोगे तरा कसीरम, तुम देखोगे कसीरम बहुत से मिनहुम उनमें से, ये तवल्लौन लदीना काफर, ये भाग भाग के जाते हैं दोस्तियां करते हैं काफरों के साथ। किनके साथ दोस्ती करते थे यहूदी उस वक्त में, मुशरिकीन मक्का के साथ, हालांकि उनको तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आना चाहिए था, मुसलमानों के साथ दोस्ती करनी चाहिए थी, जो उनकी किताब को भी मानने वाले थे, जो उनके रसूल को मानने वाले थे, जो उसी खुदा को मानते हैं जिसको वो मानते हैं, उनकी बजाय वो उन बुत परस्तों के पास भाग भाग के दोस्तियां करते थे। नबी समा कद्दमत लहुम अनफुसुहुम अनसखित अल्लाहु अलैहिम, कितना बुरा है जो उन्होंने आगे भेजा, ये अमल है ना, दोस्ती करना भी एक अमल है, जो इन्होंने आगे भेजे जितने भी इनके करतूत थे वो भी सब, और इस तरह क्योंकि जो अल्लाह वाला है वो उसके साथ विलायत का रिश्ता नहीं रखता। मैंने आपको बताया था ना विलायत वो दोस्ती है जो गहरी दोस्ती, जिसमें इंसान दूसरे को अपना सपोर्ट समझता है, उसकी तरफ देखता है अपने मुश्किल वक्त में। तो ये कितना बुरा अमल कर रहे हैं, जो कितना बुरा अमल है जो ये आगे भेज रहे हैं अपने नफ्सों के लिए, आगे किसके पास, अल्लाह के पास जो भेज रहे हैं। हर इंसान अल्लाह के पास अपने अमल भेज रहा है, कोई अच्छे भेजता है कोई बुरे भेजता है। जो ये काम कर रहे हैं बुराइयों के ऊपर ठंडे पेटों बैठ जाना, कंफर्टेबल हो जाना, ये या अल्लाह की नाफरमानियां, लोगों पे जुल्म करना, ये सब वो अमल है जो बुरे अमल है जो वो आगे भेज रहे हैं। अनसखित अल्लाह अलैहिम, ये कि नाराज हुआ अल्लाह उन पर, इनके अमल ऐसे हैं कि अल्लाह इनसे नाराज हो गया उन अमाल की वजह से, और फिर अदाबी हम खालिदून, और अजाब में ये हमेशा रहने वाले। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला ने तो कुरान पाक में फरमाया ना या ये बल इतना आमन तकुल्लाह वल्तंजुर नफ्स मा कद्दमत लिगद, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, और चाहिए कि हर नफ्स देखे वो अपने आगे कल के लिए क्या भेज रहा है, ये देखो अपने कल के लिए क्या भेज रहे हैं, वो काम जो अल्लाह को नाराज करने वाले, जिनसे अल्लाह नाराज हो गया। अल्लाह की लानत भी तो तब आती है ना जब अल्लाह नाराज हो जाए, तो कल जो है वो दूर नहीं है, इंसान दुनिया से जा रहा होता है और आखिरत में अभी कदम रख रहा होता है, अभी आखिरत में गया नहीं है, और अल्लाह की नाराजगी के आसार शुरू हो जाते हैं। हद्दे निगाह तक जब फरिश्ते बैठ जाते हैं, तो ऐसा इंसान जिसने आगे बुराइयां भेजी, जो फासिक फाजिर है, वो अभी दुनिया में पड़ा हुआ है, घर वाले करीब खड़े हैं, फरिश्ता आके उसको कहता है नापाक रूह खबीज रूह निकल अल्लाह की नाराजगी की तरफ और उसके गुस्से की तरफ, वो तेरा इंतजार कर रहा है। अभी आगे तो क्या जाना है, अभी तो दुनिया में ही पड़ा हुआ है, अभी तो यहां से कनेक्शन कटा नहीं है, तो उस वक्त ही रुखसत होने से पहले ही ये बात पता चल गई, और जब उसको ये खबर मिलती है तो वो जाना चाहेगा, कोई वो जाना नहीं चाहता, लेकिन हम कर क्या सकता है, अब तो वक्त खत्म हो गया, अब तो अल्लाह को मनाना पॉसिबल नहीं, अब तो तौबा पॉसिबल नहीं, अब कुछ सही करना पॉसिबल नहीं, अब वो पकड़ा गया है। अब जब ये बात उसकी रूह सुनती है ना, तो वो अंदर छुपती है जिस्म के अंदर, वो निकलना नहीं चाहती, क्योंकि उसको पता चल रहा है आगे तो अजाब है, आगे मैंने क्या भेजा हुआ है वो तो अल्लाह को नाराज करने वाली चीजें, तो पहले स्टेप पर ही उसको खबर मिल जाती है कि अल्लाह की नाराजगी है आगे तेरे लिए। सोचे ऐसे बंदे का हाल फिर क्या होता होगा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हाल बताया ना कि ऐसे इंसान की रूह फिर कैसे निकलती है, फरमाया जैसे मिसाल दी कि जैसे ऊन है गीली ऊन, उसके अंदर गर्म सलाई डाल दी जाए गीली ऊन के अंदर, तो वो पता है सारी जो सलाई के साथ ना वो गीली ऊन चिपक जाती है, बिल्कुल चिमट जाती है। फिर अगर कोई सलाई को खींचेगा तो क्या होगा, वो ऊन तार तार होके उधड़ के खत्म हो जाती है। तो फरिश्ते इस तरह से उसको खींच के निकालते हैं उसकी रूह को, तो उसका हाल क्या होता होगा। अल्लाह हमें ईमान की हालत में दुनिया से लेकर जाना इस हाल में कि तू हमसे राजी हो। अल्लाह अपनी नाराजगी से जिंदगी के हर लम्हे में भी महफूज रखना, और या अल्लाह मौत के वक्त भी। और जो मोमिन है उसकी जब जान निकलेगी तो तब भी, अभी उस दुनिया से गया नहीं, अभी बिल्कुल लास्ट में है। तो मलकुल मौत आगे कहता है घर वाले पास खड़े हैं देख रहे हैं, उनको नहीं नजर आ रहा। फरिश्ता आके कहता है कि मैं पाक रूह चल अपने रब की रजा की तरफ, उसकी मगफिरत की तरफ, वो तेरा इंतजार कर रहा है, उसकी मगफिरत तेरा इंतजार कर रही है। तो अब वो इंसान खुशी के साथ उसका क्या हाल हो, रूह निकलना एक मुश्किल मरहला है, लेकिन सोचे उसकी खुशी का क्या हाल हो। फिर तो वो रूह कहती है मुझे जल्दी निकालो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मिसाल दी जैसे लेदर बैग होता है, लेदर बैग में पहले जमाने में लेदर बैग में पानी डाला करते थे, भरा करते थे, उस मुश्क का अगर मुंह खोल दिया जाए तो जैसे पानी इधर तक इधर निकल के गिरता है, उस तरह वो रूह निकलती है जिस्म के अंदर से। ये उसको इतनी बड़ी खुशखबरी मिल गई अल्लाह की मगफिरत और उसकी रजा है मेरे लिए, तो अल्लाह की नाराजगी का तो फौरन पता चल जाएगा। जिस वक्त इंसान जाने लगेगा तभी पता चल जाना है जिसने आगे ऐसे अमल भेजे होंगे, फिर ऐसे अमल कितने बुरे हैं कि जिनसे अल्लाह की नाराजगी मिले और उसके लिए हमेशा का अजाब है जो लोग ऐसे काम करते हैं। मतलब कानू यूमिनून बिल्लाहि वन नबी, और अगर ये होते ना ईमान रखते अल्लाह पर वन नबी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अब ये उनको यहूदियों का कहा जा रहा है, लेकिन देखिए सबके लिए है ये कि ऐसे लोगों के साथ दोस्ती है, उनके साथ ताउन करना, उनके साथ गहरे दोस्त बन के बैठना। अल्लाह ताला ने फरमाया अगर वो अल्लाह पे ईमान रखते और नबी पे, तो देखे गैरत ना आती कि ये मेरे अल्लाह को ऐसे कहने वाले हैं, उसका इनकार करने वाले हैं, मेरे नबी का इनकार करने वाले हैं, मैं कैसे इनसे दोस्ती करूं। लेकिन अगर ये होते ना ईमान लाते अल्लाह पर और नबी पर, वह उनजी पर जो कुरान इस नबी पे नाजिल हुआ, मत तफजुम को लिया, तो ना वो बनाते उनको दोस्त कभी अहले मक्का को, उन मुशरिकीन को। बोला किन्ना कसीर उन्हें, इनका मसला ये है इनमें से बहुत सारी हैं जो फासिक है, अल्लाह की किताब से ही निकलने वाले, उनको परवाह ही नहीं। फिर उसके बाद आखिर में बता दिया गया अल्लाह तजीदन्ना। अब ये वाली जो आयत है ना एक्चुअली ये अगले पारे के साथ कनेक्टेड है, लेकिन चूंकि हमने ये पारा खत्म करना तो आज ये आयत हम पढ़ लेते हैं, लेकिन इंशाल्लाह उसके साथ आप कनेक्शन जब देखेंगे तो फिर आपको ज्यादा अच्छी तरह भी समझ आएगी। अल्लाह तजीदन्ना अशद्दन्ना की अदावत, अलबत्ता तुम जरूर पाओगे सबसे ज्यादा सख्त अदावत में दुश्मनी में, लदीना ईमान वालों की दुश्मनी में किनको सबसे ज्यादा पाओगे, किस कौम को, अल यहूदा वल्लदीना शर्कू, यहूद को और शिर्क करने वालों को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी जैसे मैंने आपको बताया यहूदियों ने इतनी खुफिया साजिशें आपके खिलाफ की, इसी तरह मुशरिकीन ने आपको कितनी नुकसान देने की कोशिश की, तो इनकी दुश्मनियां हद से बढ़ी हुई थी। और आज भी अगर आप ग्लोब पे दुनिया के देखें तो जो मुसलमान जहां जहां पिट रहे हैं वहां पे यही दो कौमें हैं जो उनको पीट रही, या तो यहूदी हैं या तो मुशरिकीन हैं। और अलबत्ता तुम जरूर पाओगे सबसे ज्यादा करीब मोहब्बत में ईमान वालों की उन लोगों को जिन्होंने कहा हम नसवारा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में क्या था कि नबी रसूलुल्लाह की जब उन्होंने भेजा था ये जाफर तैयार और उनके साथ और मुसलमानों ने हिजरत की थी, तो नजाशी ने कितना अच्छा उनके साथ सलूक किया था। इसी तरह नजाशी ने जब वफद भेजा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तो उनके साथ क्या हुआ था वो भी हम आगे पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। तो इनके दिल नरम होते हैं और नरमी की वजह क्या है आप देखें कि इनकी किताबों में भी लिखा हुआ है कि तुम्हें एक को थप्पड़ मारे ना तो तुम दूसरा गाला भी कर देना। तो ये नहीं बताया जा रहा कि ईसाई तुम्हारे बहुत हमदर्द हैं, या वो कंपैरिजन किया जा रहा है कि यहूदियों और मुशरिकीन के मुकाबले में ईसाई फिर भी तुम्हारे से दुश्मनी कम है उनको, फिर भी वो ज्यादा मोहब्बत में आगे हैं। मगर ऐसा नहीं है कि उनके दिल में कुछ है ही नहीं इस्लाम के खिलाफ कोई, और कोई बिल्कुल वो इस्लाम के साथ बहुत अच्छे हैं पक्के हैं। ये उस वक्त के उन नजाशी और इसी तरह और उनके साथी जो थे फिर मुसलमान हो गए थे उनकी बात है, क्योंकि आगे देखिए उनकी क्वालिटीज बताई जा रही है। इसको आप हर एक नसारा में फिट नहीं कर सकते, बल्कि उनकी क्वालिटीज क्या है, जालिका भी अन्ना मिन हो, ये इस वजह से कि बेशक उनमें से हैं जिससे तीन उलमा है, उलमा भी इबादत गुजार, वो उलमा बाअमल उलमा व रोहबान है, और इनमें ऐसे भी हैं जो राहिब है, उनको नहीं दुनिया का कोई लालच या कोई ऐसी चीज है, कि कई ऐसे होते हैं ना कि जैसे यहूदियों के अंदर था कि हमारे ओहदे का क्या बनेगा, हम अगर इससे निकल आए उतर आए नीचे मुसलमान हो गए तो हमें कौन पूछेगा। तो इनमें राहिब किस्म के लोग होते हैं जो ईसाई है, जो दुनिया छोड़ के मस्त है अपने अल्लाह की इबादत में लगे हैं, तो उनको नहीं ये लालच है ओहदे वगैरह का, इस तकबीरों का इनमें बड़ाई नहीं है, जो कि यहूदियों के अंदर बहुत ज्यादा कूट कूट के भरी हुई थी अपनी बड़ाई का एहसास, जो आज तक है कि यहूदी अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझते हैं कि हमसे ज्यादा तो कोई है ही नहीं। तो इनके अंदर ये दो चीजें नहीं है, एक तो इनमें रोहबान है और दुनिया का लालच नहीं है, राहिब किस्म के लोग इनमें हैं, इनमें उलमा भी हैं जो कि बाअमल है, ये तकबर नहीं करते, तकबर नहीं है। तो जिनके अंदर ये तीन क्वालिटीज हो वो है फिर मुवद्दत में मुसलमानों के करीब। आजकल तो ऐसे नजारा भी है उनको तो अपने दीन का नहीं पता, जैसे हमारे मुसलमानों में है जिनको बस नाम के मुसलमान है उसके आगे कुछ नहीं, इसी तरह ईसाइयों में भी, लेकिन जो ऐसे होंगे वो फिर भी मुसलमानों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, मगर ये जो दो कौमें हैं यहूद और मुशरिकी, ये तो हरगिज मुसलमानों के साथ कोई मोहब्बत के मामला नहीं, इनकी तो दुश्मनी तारीख में उठा के देख लें आपको पूरी हिस्ट्री में इनकी दुश्मनी पता चल जाएगी, और अशरकों में सारे ही आ जाते हैं जितने भी शिर्क करने वाले हैं, आप देख लें जो बुद्धिज्म है जो हिंदुइज्म है जो और जितने भी शिर्क वाले मजाहिब है तो सब इसके अंदर आ जाते हैं। मगर एक बात याद रखिए, प्लीज इसको इंडिविजुअल्स के ऊपर फिट करने की कोशिश ना करें। तो बाद लोग कहते हैं नहीं जी हमारे तो फलां फ्रेंड्स हैं वो ज्यूज हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, मेरे तो नेबर में ज्यूज रहते हैं वो तो, देखिए इंडिविजुअल्स की नहीं बात हो रही, ओवरऑल कौम की बात हो रही है, कौम के अंदर कोई अच्छा भी पाया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल जो मेजोरिटी लोगों में चीज होती है ना उसको बताया जाता है, एक्सेप्शनल केसेस को नहीं बताया जा रहा यहाँ पे। तो ओवरऑल उनके अंदर ये चीजें हैं यहूदियों में और मुशरिकीन में, और ओवरऑल जो नसारा तीन इन क्वालिटीज को रखते हैं उनके अंदर ये है कि वो मुवद्दत में है मुसलमानों के साथ। ठीक है, तो हर एक पे ना फिट करने की जरूरत है, ना हर क्रिश्चियन पे ना हर यहूदी और उसके ऊपर, बल्कि ओवरऑल इसको देखा जाए कि इनका क्या रवैया होता है मुसलमानों के साथ। जिस तरह आप देखें हरकल भी जो था वो मुसलमान तो नहीं हुआ था, रोम का जो बादशाह था, मगर उसके उसने एक मतलब सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया था मुसलमानों के लिए। इसी तरह मकौकस जो था वो क्रिश्चियन बादशाह था, उसने भी आप तोहफे वगैरह भेजे थे जिनमें हजरत मारिया फितिया को भी उसी की तरफ से आई थी। तो ये यानी उन लोगों ने इस्लाम तो नहीं भी एक्सेप्ट किया तो तब भी उन्होंने एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा, इस तरह नहीं चढ़ाइयां की जैसे दूसरों ने की। तो ये एक फर्क तारीख का मैं आपको बता रही हूँ, इसी तरह हर जमाने में भी रहा है। अल्लाह ताला हमें इन आयात को सही समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपका छठा पारा मुकम्मल हुआ, आप देखिएगा जिंदगी रही इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला से हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ने हिम्मत दे, सेहत के साथ सबको रखे और आफियत अता फरमाए और हमारे से ये काम मुकम्मल कराए कि एक दिन इंशाल्लाह ये भी होगा कि आप तीसवां पारा मुकम्मल कर रहे होंगे, तो वक्त का पता भी नहीं चलता। आप देखें आपको डेढ़ साल से थोड़ा ऊपर हुआ है, इसी अरसे में आप इधर उधर घूम फिर भी रहे हो सकते थे, लेकिन आपने माशाल्लाह 6 पारे मुकम्मल कर लिए, और सबसे ज्यादा तो उनको मुबारकी है जिन्होंने हर लेक्चर सुना, हर आयत को सीरियसली लिया, हर आयत को नोट डाउन किया और हर आयत से अपने लिए अमल की बातें सीखी हैं समझी हैं। माशाल्लाह जो डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहे हैं उनके लिए बहुत मुबारक है। तो हर आयत अपना एक मैसेज रखती है, तो इससे हमें सीखना भी है और इस इल्म को शौक के साथ लेना है, इस इल्म को शुक्र गुजारी के जज्बे के साथ लेना है। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस काबिल किया कि मैं यहाँ तक पहुंची, अब अमल भी करा देना और अमल को मेरे लिए आसान भी कर देना या अल्लाह। तो इन दुआओं के साथ हमने आगे भी बढ़ना है और कोशिश भी साथ करनी है इंशाल्लाह ताला। कोशिश करेंगे और दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला जरूर कामयाबी अता फरमाएगा। मैंने अपनी तफसीर में देखा कि मैंने लिखा हुआ है कि मैंने कभी पढ़ाया होगा पहले, तो उस पर लिखा हुआ है सुभान अल्लाह 2002 मार्च 2002। तो मैं ये सोच रही थी कि देखिए यही बात है ना, माँ कदम मतलब हूँ कि जो आगे भेजा उन्होंने मुझे याद भी नहीं है, वो मैं पढ़ के मैं सोच रही थी कि उस वक्त मैंने क्या बोला होगा, क्या कहा होगा, मुझे नहीं पता क्या मैंने पढ़ाया होगा। तो अब कितना अरसा गुजर गया, और आज जब वो डेट पे नजर गई तो मैंने कहा देखो अल्लाह ताला के हाँ, तो एक एक लफ्ज भी लिखा होगा, एक एक डेट के साथ, एक एक टाइम के साथ, हमें भूल जाता है कि हम आगे क्या भेज रहे हैं। अल्लाह के यहाँ भूल नहीं, उसके यहाँ हर चीज नोट हो रही है। सुभान अल्लाह, इस तरह ही वक्त और गुजरता जाएगा, लेकिन ये चीजें हमें चाहे याद रहे ना ये कहें, लेकिन ये तोशा आखरत बनती जाती है आहिस्ता आहिस्ता इस तरह, तो अपना तोशा बढ़ाते जाए आखरत के लिए। अल्लाह ताला हम सबका बैठना और सीखना कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون